लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहां तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है दिव्य करुणा महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस का उपदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। पापा फ्रांसिस ने रविवार 11 अप्रैल को दिव्य करुणा महापर्व के अवसर पर रोम के सांतो स्पिरितो गिरजाघर में समारोही ख्रिस्त्याग अर्पित किया। यह गिरजाघर दिव्य करुणा को समर्पित है। संत पापा ने उपदेश में कहा, पुनर्जीवित प्रभु शिष्यों को कई बार दिखाई दिए, धीरज पूर्वक उनके निराश हृदय को सांत्वना देते रहे। उनके पुनरुत्थान के बाद शिष्यों का भी पुनरुत्थान हुआ और वे यीशु के साथ जी उठे। उनके जीवन में परिवर्तन आया। प्रभु के कई शब्दों एवं उदाहरणों ने भी उनके हृदय को बदल नहीं पाया था। अब पास्का में कुछ नया हुआ और यह करुणा के चिन्ह स्वरूप हुआ। यीशु अपनी करुणा से उन्हें ऊपर उठाते हैं और वे भी करुणा प्राप्त कर करुणामय बन जाते हैं। संत पापा ने कहा कि दयालु बनना बहुत कठिन है यदि व्यक्ति दया की आज्ञा महसूस नहीं करता।
Anzitutto vengono misericordiati attraverso tre doni.
सबसे पहले वे तीन वरदानों द्वारा दया किए जाते हैं, शांति, पवित्र आत्मा और यीशु के घाव के द्वारा। पहले स्थान पर वे शांति प्राप्त करते हैं। वे शिष्य परेशान थे, वे भय से एक कमरे में बंद थे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी गिरफ्तार ना किए जाएं और गुरुजी के समान उनका अंत हो जाए। वे न केवल घर में बंद थे बल्कि आत्मग्लानि के द्वारा भी बंद थे। उन्होंने यीशु को छोड़ दिया था, उनका बहिष्कार किया था। वे असमर्थ, शक्तिहीन एवं गलत होने का एहसास कर रहे थे। यीशु उनके बीच प्रकट होकर दो बार कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यह शांति बाहर की समस्याओं को दूर करने वाली नहीं थी बल्कि एक ऐसी शांति थी जो अंदर में दृढ़ता जगाती है। यह बाहरी शांति नहीं है किंतु हृदय की शांति है। वे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह ऐसा कहने के समान है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ क्योंकि तुम पर विश्वास करता हूँ। उन निराश शिष्यों ने अपने आप में शांति महसूस किया। यीशु की शांति ने उन्हें आत्मग्लानि से पार किया। यीशु की शांति वास्तव में मिशन के लिए तत्परता उत्पन्न करता है। यह मौन नहीं है, न ही आरामदायक है, यह अपने आप से बाहर निकलना है। यीशु की शांति उस बंध से मुक्ति दिलाती है जो व्यक्ति को विकलांग बनाता, उस जंजीर को तोड़ती है जो हृदय को बंद रखता है। इस तरह शिष्य दया किए गए महसूस करते हैं। वे महसूस करते हैं कि ईश्वर दंड नहीं देते, अपमानित नहीं करते बल्कि उन पर विश्वास करते हैं। वे हम पर इतना विश्वास करते हैं जितना हम खुद अपने आप पर विश्वास नहीं करते। वे हमें इतना प्यार करते हैं जितना हम अपने आप को प्यार नहीं करते हैं। ईश्वर के लिए कोई भी गलत नहीं है, कोई भी व्यर्थ अथवा बहिष्कृत नहीं है। संत पापा ने कहा कि यीशु आज पुनः दोहरा रहे हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम मेरी नजरों में मूल्यवान हो, तुम्हें शांति मिले जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम्हें शांति मिले जिसका एक मिशन है, तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। संत पापा ने कहा, दूसरे स्थान पर यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हुए दया दिखलाते हैं। वे इसे पापों की क्षमा के लिए प्रदान करते हैं। शिष्य दोषी थे, वे अपने गुरु को छोड़कर चले गए थे। पाप उन्हें परेशान कर रहा था। बुराई की अपनी कीमत होती है। स्तोत्र कहता है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। हम अपने आप से इसे हटा नहीं सकते, सिर्फ ईश्वर अपनी दया से इसे दूर कर सकते हैं और हमें अपनी दयनीय स्थिति के गर्त से बाहर निकलने में मदद देते हैं। इन शिष्यों के समान हम भी ईश्वर को क्षमा करने दें। दिल से कहें, प्रभु क्षमा कर। क्षमा किए जाने के लिए हृदय को खोलना है और पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त क्षमादान अंदर से जी उठने के लिए पास्का का दान है। हम इसे ग्रहण करने, क्षमाशीलता के संस्कार को प्राप्त करने और यह समझने के लिए कृपा मांगें कि पाप स्वीकार संस्कार में हम अपने पापों के साथ नहीं बल्कि ईश्वर अपनी करुणा के साथ केंद्र में होते हैं। हम पाप स्वीकार संस्कार में तोड़ने के लिए नहीं जाते किंतु समाधान पाने जाते हैं, जिसकी हम सभी को अत्यधिक आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता हमें छोटे बच्चों के समान है। जब कभी हम गिर जाते हैं, हमें पिता के द्वारा उठाए जाने की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि हम भी बहुत बार गिरते हैं और पिता का हाथ हमें उठाने एवं आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पाप स्वीकार संस्कार में यह हाथ निश्चित एवं विश्वास योग्य है। यही वह संस्कार है जो हमें पुनः उठाता है और हमें कड़े जमीन पर रोते हुए पड़े रहने नहीं देता है। शांति प्रदान करने एवं क्षमा देने के बाद तीसरे दान में करुणावान यीशु शिष्यों को घाव अर्पित करते हैं। उन्हीं घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। पर किस तरह घाव हमें चंगा करते हैं? वे हमें करुणा से चंगा करते हैं। थॉमस के समान हम भी अपने हाथों से उन घावों का स्पर्श करें जिनके द्वारा ईश्वर ने हमें अंत तक प्यार किया है, हमारे घावों को अपना बना लिया है, अपने शरीर में हमारी दुर्बलता को धारण किया है। ये घाव उनके और हमारे बीच एक चैनल के समान हैं, जो हमारी दयनीय स्थिति में हमारे लिए करुणा बरसाते हैं। वे रास्ते हैं जिन्हें ईश्वर ने चौड़ा कर दिया है कि हम उनकी कोमलता में प्रवेश कर सकें और अपने हाथों से उनका स्पर्श करें, ताकि उनकी करुणा पर कभी संदेह ना हो। हम उनके घावों की आराधना करते उन्हें चूमते हैं, क्योंकि हमारी हर दुर्बलता उनकी कोमलता में स्वीकार किया गया है। संत पापा ने कहा कि यह हर मिस्सा में होता है जहां यीशु अपने घायल और जी उठे शरीर को अर्पित करते हैं। हम उनका स्पर्श करते हैं और वे हमारे जीवन को छूते हैं और उनके द्वारा स्वर्ग हम में उतर आता है। उनके घावों के प्रकाश हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं और हम थॉमस के समान ईश्वर को पाते हैं। हम उन्हें अपने आप से संयुक्त एवं निकट में पाते हैं और उनसे प्रेरित होकर कहते हैं, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। और यहीं दया किए जाने की कृपा से सब कुछ शुरू होता है। यहीं से ख्रिस्त यात्रा शुरू होती है। दूसरी ओर यदि हम अपनी क्षमता, अपने कौशल, अपनी संरचना और हमारी योजनाओं पर आधारित हों, तो हम अधिक दूर नहीं चल पाएंगे। पर यदि हम ईश्वर के प्रेम को ग्रहण करेंगे तो हम दुनिया को निश्चय ही कुछ दे पाएंगे। शिष्यों ने ऐसा ही किया। दया किए जाकर वे भी दयालु बन गए। इसको हम पहले पाठ में देख सकते हैं। प्रेरित चरित्र बतलाता है कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। यह समुदायवाद नहीं था, यह शुद्ध ख्रिस्तियता थी। अब वे अपने पास जो कुछ था उसको साझा कर रहे थे और वे एक हृदय एवं एक प्राण हो गए थे। वे किस तरह ऐसे बदल गए थे? उन्होंने दूसरों को उसी दया से देखा जिस दया से उनका जीवन बदल गया था। उन्होंने महसूस किया कि मिशन, क्षमाशीलता और यीशु का शरीर उन सभी के लिए है। अतः पृथ्वी की चीजों को बांटना एक स्वाभाविक बात हो गई। आगे कहा जाता है कि उनमें से कोई जरूरतमंद नहीं था। उनका भय प्रभु के घाव का स्पर्श करने के कारण समाप्त हो गया था। अब वे दूसरों के घावों को चंगा करने में डर महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे यीशु को देख रहे थे, क्योंकि यीशु वहां उपस्थित थे। संत पापा ने कहा, बहन और भाई, क्या आप प्रमाण चाहते हैं कि ईश्वर ने आपके जीवन का स्पर्श किया है? दूसरों के घावों की ओर झुके और आप इसे प्रमाणित कर पाएंगे। आज अपने आप से पूछने का दिन है, मैंने ईश्वर की शांति, उनकी क्षमा और उनकी करुणा को कई बार प्राप्त किया है, पर क्या मैं दूसरों के प्रति दयालु हूँ? मैं ने कई बार उनके शरीर को ग्रहण किया है। क्या मैं गरीबों को खिलाने के लिए कुछ करता हूँ? हम उदासीन ना रहें, हम विश्वास को आधा ना जिएं। जो पाता तो है मगर देता नहीं, जो कृपा को ग्रहण तो करता किंतु दूसरों को उपहार नहीं देता। हम दया किए गए हैं, इसलिए दूसरों के प्रति भी दयालु बने, क्योंकि यदि प्रेम हम ही तक सीमित रहे, विश्वास फलहीन रहे, तो दूसरों के लिए कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव होगा। आइए हम शांति, क्षमाशीलता और करुणावान यीशु के घाव के द्वारा अपने को पुनर्जीवित होने दें और करुणा के साक्षी बनने के लिए कृपा की याचना करें। सिर्फ इसी के द्वारा विश्वास जीवित रहेगा और जीवन सामंजस्यपूर्ण होगा। केवल इसी तरह हम ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा कर पाएंगे, जो करुणा का सुसमाचार है।
तू है दया का सागर पिता, भर दे मुझ में प्यार तेरा।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। हम पास्का काल के दूसरे सप्ताह में हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 12 अप्रैल को एक ट्वीट कर पुनर्जीवित प्रभु में अपने विश्वास को दृढ़ रखने हेतु प्रेरित किया। संदेश में संत पापा ने लिखा, यीशु जी उठे हैं, वे हमें बचाने के लिए मृत्यु का सामना किए और जी उठे। इससे पहले कि हम उसकी खोज करें, वे हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे गिरने के बाद वे हमें फिर से उठाते हैं। वे हमें विश्वास में बढ़ने हेतु मदद करते हैं। साथ ही संत पापा ने दिव्य करुणा रविवार को 4 ट्वीट कर करुणामय प्रभु के प्रेम का अनुभव करने और दूसरों के प्रति दयालु बनने हेतु प्रेरित किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने लिखा, यीशु के घाव उनके और हमारे बीच एक खुले चैनल हैं, जो हमारी दयनीय स्थिति में हम पर करुणा बरसाते हैं। वे रास्ते हैं जिन्हें ईश्वर ने चौड़ा कर दिया कि हम उनकी कोमलता में प्रवेश कर सकें और अपने हाथों से उनका स्पर्श करें। आइए हम उनकी करुणा पर कभी संदेह ना करें। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, आज यह पूछने का दिन है कि क्या मैं, जिसने प्रभु की दया को बहुत बार पाया है, दूसरों पर दया की है? आइए हम एक तरफा विश्वास को न जिएं, एक ऐसा विश्वास जो लेता है लेकिन देता नहीं। दया प्राप्त करने के बाद हम दयावान बने। तीसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, आइए हम शांति, क्षमाशीलता और करुणावान यीशु के घावों से खुद को नवीनीकृत करें। सिर्फ इसी के द्वारा विश्वास जीवित रहेगा और जीवन सामंजस्यपूर्ण होगा। केवल इस तरह हम ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा कर पाएंगे, जो करुणा का सुसमाचार है। और चौथे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, आप उन परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें दया को मूर्त बनाया जाता है। यह कठिनाई में उन लोगों के लिए निकटता, सेवा और देखभाल बन जाता है। मुझे आशा है कि आप हमेशा महसूस करेंगे कि आप पर दया की गई है, ताकि बदले में आप अन्य लोगों के प्रति दयालु बनेंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने दिव्य करुणा रविवार को रोम स्थित सासिया के सांतो स्पिरितो गिरजाघर में कुछ विश्वासियों के साथ पवित्र मिसा का अनुष्ठान किया। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया। प्रार्थना का पाठ करने से पहले संत पापा ने कहा, प्रार्थना करने से पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसे तैयार करने और इसे लाइव प्रसारित करने में सहयोग दिया। इसके बाद संत पापा ने मीडिया के सभी माध्यमों से पवित्र मिसा में भाग लेने वालों का अभिवादन किया। संत पापा ने विशेष रूप से वहां उपस्थित विश्वासियों, नर्सों, कैदियों, विकलांग लोगों, शरणार्थियों और प्रवासियों, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों और हॉस्पिटलर सिस्टर्स ऑफ मर्सी सहित गिरजाघर में मौजूद पुरोहितों का अभिवादन किया। संत पापा ने कहा, आप उन परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें दया को मूर्त बनाया जाता है या उन लोगों के मुश्किल समय में निकटता सेवा और देखभाल बन जाता है। संत पापा ने मिसा के दौरान अपने प्रवचन में शुरू की गई एक थीम पर लौटते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप हमेशा महसूस करेंगे कि आप पर दया की गई है, ताकि बदले में आप अन्य लोगों के प्रति दयालु बनेंगे। उन्होंने इस प्रार्थना के साथ अपनी संक्षिप्त टिप्पणी को समाप्त किया, दया की माँ कुमारी मरियम, हम सभी के लिए यह कृपा प्राप्त करें। उधर म्यांमार में यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने 1 फरवरी को सैन्य तख्ता पलट के 2 महीने से अधिक समय बाद देश की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, यह एक सच्चा क्रूस रास्ता जो रक्त और आंसू, अंधेरे और मृत्यु, दर्दनाक यादें, माताएं अपने बच्चों के लिए शोक करती हैं। अब तक 600 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 11 अप्रैल दिव्य करुणा रविवार को जारी एक संदेश में कार्डिनल बो ने विशेष रूप से आबादी द्वारा अनुभव किए गए मानव पीड़ा, देश के उत्तर में कचिन राज्य की राजधानी मितक्वीनाक में घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, यहाँ मार्च की शुरुआत में संत फ्रांसिस जेवियर के धर्म समाज की सिस्टर आन न्यू त्वांग ने सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेक कर विनती की कि शांति से विरोध कर रहे युवा प्रदर्शनकारियों को गोली न मारें। दुनिया ने बुराई की सुनामी के सामने महान बलिदान गवाह को विस्मय के साथ देखा। यांगून के महाधर्माध्यक्ष ने विश्वासियों से इस मुक्तिदायक प्रेम की गवाही से एक सीख लेने का आग्रह किया, क्योंकि अंधेरे में उदारता के साधारण कार्य भी तेजी से चमकते हैं। उन्होंने कहा, अच्छे कर्मों की आज हर जगह जरूरत है। करुणामय प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमें कार्य रहित विश्वास नहीं होना चाहिए। इसके लिए कलीसिया अपने लोगों के संघर्ष के करीब रही है। वो खून और आंसू में साथ देने के लिए बुलाई गई है। कार्डिनल बो ने विश्वासियों को पुनरुत्थान की आशा से मजबूत होकर यह याद रखने के लिए आमंत्रित किया कि मृत्यु से जीवन जन्म लेगा और ईश्वर कब्र में भी चमत्कार कर सकते हैं। सभी बड़ी चुनौतियों के बीच आज हम ईश्वर की दया चाहते हैं। हमें म्यांमार में ईश्वर के दया की रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि अंधेरे के चेहरे में क्षमा और नफरत के चेहरे में प्यार, यह प्रभु का संदेश है। उधर हाइती में एक आपराधिक गिरोह द्वारा 5 पुरोहितों, 2 धर्म बहनों और 3 लोक धर्मियों का अपहरण कर लिया गया है। स्थानीय धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा सूचना दी गई कि अपहरणकर्ताओं ने 10 लोगों की रिहाई के लिए $1 मिलियन की राशि मांगी है। यह हमला तब हुआ जब यह समूह राजधानी पोर्ट यू प्रिंस के उत्तर पूर्व क्षेत्र में यात्रा कर रहा था। हाइती धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव फादर गिलबर्ट ने कहा, राष्ट्र को इन प्रकरणों से लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए। हथियारबंद लोगों द्वारा 1 पुरोहित और 3 अन्य लोगों का अपहरण करने के 2 सप्ताह बाद इन 10 लोगों का अपहरण किया गया है। उधर 2012 तक परम धर्म पीठीय कोष के दानदाता रहे धर्माध्यक्ष फेलिक्स डेल ब्लेंको प्रिंटो का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शनिवार 10 अप्रैल को रोम के जमेली पोली क्लिनिक में उनका निधन हुआ। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।